फिर इसके बाद कुफार और मुशरिकीन से तावन। अब ये एक और ही नई तरह खुलने लगी है। बारवां अमल है जिससे ईमान फौत होता है, किस रंग में, आइए इसको पढ़ते हैं। जो शख्स मुसलमानों के मुकाबले में मुशरिकीन की इमदाद करता है और इनका साथ देता है, वो भी फिल हकीकत दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। इस पर दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, सूरत माईदा आयत 51, वमई यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। इतने पे आप कॉमा लगा लें या हाईलाइट कर लें, और याद करना चाहें तो ये याद भी कर लें, और तुम में से जो कोई इनको अपना रफीक बनाता है तो इसका शुमार बीनी में से होता है, क्योंकि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, यकीन अल्लाह ताला ज़ालिमों को अपनी रहनुमाई से महरूम कर देता है। इसी तरह सूरत निसायत 138-139, बशरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, अल्लज़ीन यत्तखिज़ून अलकाफिरीन औलिया औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयबतगून इंदहुमुल इज्ज़त फ़इन्नल इज्ज़त लिल्लाहि जमीया। और जो मुनाफिकीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को रफीक बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, इनको खबर सुना दो कि इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। क्या ये लोग इज्जत की तलब में इनके पास जाते हैं? हालांकि इज्जत सारी की सारी सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। तो जाहिर हुआ कि मोमिनीन के लिए दिल में मोहब्बत का ना होना और कुफार के लिए दिल में मोहब्बत और अजमत का होना ईमान की नहीं बल्कि कुफर की दलील है। थोड़ा सा समझ लें, कुरान पढ़े हुए लोग तो इस मामले को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दो मौके हैं कुरान पाक के जहां ये डिटेल से बात होती है, एक तो सूरत निसा 138-139, और इसी तरह से पीछे सूरह बकरा में भी एक आयत आती है, माईदा में भी आती है कि कुफार के साथ तावुन ताल्लुक इसकी क्या हदें हैं। लेकिन हो सकता है कि नए लोग भी इस बात को सुने और वो एकदम परेशान हो जाएं कि तावुन से क्या मुराद है। तो आप देखिए कि पहली बात देखिए कि अल्लाह ताला ने इसको ईमान का हिस्सा रखा है। अल विला वल बरा कहते हैं इसको अरबी में, विला कहते हैं दोस्ती को, विलायत वली से, और बरा कहते हैं बरात बेनियाजी। इसको दूसरी तरफ कहें तो अल हुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला भी कहते हैं। पहली बात याद रखिए, दुनिया का हर इंसान अल्लाह का बंदा है। इंसानियत के नाते, बशरियत के तकाजे, हर इंसान से मोहब्बत भी करनी है, उसकी इसलाह की फिक्र भी करनी है, कोशिश भी करनी है, ठीक है। दूसरी बात यह कि अकीदा बंदे की कीमत को बदल देता है। बशर की कीमत एक ही जितनी है, हाथ आंग कान जिस्म के अज़ा हर इंसान के कीमती हैं, लेकिन जब एक इंसान ईमान लाता है ना तो असल में वो अपनी कीमत बढ़ा लेता है, क्योंकि वो अल्लाह के एक प्लान के अंदर रंग डालता है, अल्लाह के बताए हुए तरीके पे चलता है। काफिर जो है इसका मुनकर है, वो ना अल्लाह की हाकमियत को मानता है ना अल्लाह ताला के कानून को मानता है, तो वो डिवैल्यू हो जाता है। अब ऐसा शख्स जब गलत किस्म के अकायद को प्रमोट करे जो अल्लाह के दीन से टकराते हैं, तो इस वक्त फिर हुक्म क्या है कि आप उनसे बेजारी का इख्तियार करें। ये जो मुशरिकीन और कुफार से तावुन है, इसका मतलब क्या है कि एक तरफ आपकी मदद के मुस्तहक मुसलमान है और आप उनको नुकसान देकर उनके राज काफिरों को दें, ये जायज़ नहीं है। और ताल्लुकात की किस्में, जिनको डिटेल चाहिए वो इन आयतों की तफसीर सुन लें, लेकिन ताल्लुकात के मुख्तलिफ दर्जे हैं। मसलन आप देखिए कि मदारात हैं, खातर मदारत, आपके नेबर में कोई नॉन मुस्लिम है, आप उसकी खातर करें, मदारत करें, उनको बुलाएं, चाय पिलाइए, कुछ पकाएं, उनको दें, बिल्कुल ना सिर्फ ये कि इजाज़त है बल्कि रिकमेंडेड है, पसंदीदा अमल है। फिर इसी तरह एक ताल्लुक होता है मामलात का, डीलिंग, आप इनके स्टोर्स पे जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, वो आपको ऑफर करते हैं, जो जायज़ चीज़ें, हलाल चीज़ें आप लीजिए, उनको दीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर इसी तरह से एक ताल्लुक होता है मवासात का, हमदर्दी, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई सड़क पे खड़ा, कुछ भीख मांग रहा है, जरूरतमंद है काफिर, कीजिए उस पर हमदर्दी। जलजले में से कुछ लोग बच के आ गए, कोई सैलाबों में से बच गए, होमलेस पीपल है, दीजिए उनको, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चौथा ताल्लुक जिसको विलायत का ताल्लुक कहते हैं, वो जायज़ नहीं है। बस एक ताल्लुक मन है, वो क्या, दिल से उनके नजरियात को कबूल करना, उनके रंग ढंग को कबूल करना, उनके लाइफस्टाइल को पसंद करना, उन जैसे कपड़े, उन जैसा पहनावा, ये जायज़ नहीं है। एक चीज़ विलायत, यानी उनसे असिमिलेट करना। और इसी के साथ ऑपोजिट कर लीजिए कि मुसलमान को नुकसान देकर काफिर को फ़ायदा देना। मतलब जंग में गए तो मुसलमानों की तरफ से लड़ने की बजाय कुफार की तरफ से लड़ना शुरू कर दिया, इसकी इजाज़त नहीं है। और हम वेस्ट में रहने वालों को तो ये हद बंदियां बड़ी ही लाजिम है। मैं सोचती हूँ कि हमारा सबसे खूबसूरत ताल्लुक जो गैर मुस्लिमों के साथ होना चाहिए ना, वो दावा का ताल्लुक है। दावत, वो स्माइल से, वो मुस्कुराहट से, वो उनको कुछ भेज कर, वो उनके घर की बर्फ़ हटाकर, वो उनका ट्रैश उठाकर, वो उनको एक अच्छा विश कर देना, उनके मेल बॉक्स में कुछ चंद जुमले अच्छे डाल दें, राह रस्म बढ़ाएं। अगर मैं और आप आज तक जो यहाँ इन मुल्कों में एक एक करके अपने एक एक नेबर को टारगेट करते और उसको इस्लाम का खूबसूरत नक्शा दिखाते, तो यकीन करें इनमें से बहुत सारे लोगों को इस्लाम मिल चुका होता। और ऑपोजिटली इसको यहाँ मैं इस एंगल में अगर बात नहीं करूँगी तो वेस्ट में रहने वालों को ये मज़मून पूरा समझ नहीं आएगा। वो क्या है कि अपनी औलादों को ऐसे माहौल के सपुर्द कर देना कि जहाँ से वो यही रंग ढंग लेकर आए, ये भी ईमान को ख़तरे में डाल देता है। पूरा स्कूल सिस्टम, पूरा सब कुछ। आप देखिए कि आप तो चूंकि स्टूडेंट ही बैठे हैं ज़्यादा लोग, आपको तो इस बात की बड़ी अच्छी तरह खबर होनी होगी कि जिस लेवल से बचपन से एक डे केयर से एक बच्चा जिस रंग में जाके रंगता है, तो स्कूल कॉलेज में आने के बाद तो इस्लाम का रंग ही कहीं उतर चुका होता है। सोचो में कुफर और इल्हाद और बेदीनी और कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, तो ये भी ईमान के ख़तरे हैं। आप एक माँ हैं, आपका बच्चा कोई ऐसी चीज़ खा लेता है जिससे उसका पेट ख़राब होने का डर है, क्या आप रिलैक्स फील करेंगी? बाहर किसी जगह एक बिजली का तार खुला हुआ है, अल्लाह ना करे आपका बच्चा उसके करीब जाके हाथ लगाए, आप यहाँ इत्मीनान से पढ़ या पढ़ा सकती हैं? आपको डर पड़ जाए ना खटमल हैं या मच्छर हैं, बड़ी चीज़ों की तो हम बात ही नहीं करते, तो आप मुतमईन होंगी? तो जो गलत नज़रियात और सोचें बच्चों के अंदर तालीमी सिलसिले से डल रही हैं, तो आज हम मुतमईन हैं तो फिर ईमान की कमी है। सिर्फ अपनी ज़ाती सहूलतों के लिए, सबके लिए, सब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि एक बर्तन है उसको पहले खूब गंदा कर लो, बाद में बड़े अच्छे अच्छे डिटर्जेंट हम साफ कर लेंगे। एक मौलवी साहब बुलाएंगे, वो देखना इनको पक्का मोमिन बना देंगे। कोई ऐसा स्कूल देखना हमें बड़े होके मिल जाएगा, जाके इन बच्चों को अंदर डालेंगे, इनके दिल उजागर होंगे। तो ये मासूम जहन है, वल्लाही हर बच्चा आपके पास अल्लाह की एक अमानत है। मैं तो किसी बच्चे को भी देखूं, अपने ख़ानदान का या गैर का, मैं उसको अल्लाह का बंदा समझ के देखती हूँ, उसी से प्यार करती हूँ। मैं सोचती हूँ ये कितना मासूम फूल आया ना हमारे घरों में, लेकिन हम इसको क्या कर क्या रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लम और सहाबा आज के दौर में होते, वो अपने बच्चों के लिए क्या डिसाइड करते? अब वो चीज़ें नाम लेने की तो ज़रूरत नहीं जिसको हम इतना लाइट लेते कहते मिलती नहीं और चीज़ें, स्कूल ही अच्छे नहीं है, खाना भी इनको, ये ए टू जी हम अपने बच्चों को वो लाइफस्टाइल दिखाते हैं बाहर दुनिया में कि जो उनके ईमान का किलर है। फिर हम कहते हैं अल्लाह इनको मोमिन बना दे, अल्लाह बना दे, दुआएं करें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो फिक्र अपने ईमान के साथ साथ अपने बच्चों के ईमान की करें। आप देखते नहीं कि जब हम इतने बड़े होकर इन बातों को इतना सुनते हैं फिर आधी बातों पर अमल कर पाते हैं, आधी नहीं होती, तो हम कहते हैं कि बचपन से असल में हमारा ये ठीक तरीका नहीं था ना। तो ये मासूम बच्चे हैं, फूल हैं, आप इनको इस कोरे कागज़ पे कुरान लिख दें, आप इस कोरे कागज़ पे फिल्मों की स्टोरियाँ लिख दें, आप इनको गाने सुना दें, ये गरीब है और ये हम अपने स्टाइल से चूज़ करते हैं बच्चों की एंटरटेनमेंट। देखिए मुसलमान माँ बाशऊर होती है, वो अपने बच्चे को कभी खेल के नाम पर भी लगवियात नहीं दिखाती, उसको इतना पता है कि इस कोरे कागज़ पे एक दफ़ा कुछ लिख गया तो मिटाने के बाद वो शक्ल नहीं आएगी जो एक नए कागज़ की होती है। तो लिहाजा हमें अपनी और अपने बच्चों की फिक्र करनी है। आखिरी नुक्ता है इस किताब के टॉपिक के नाते से, जिससे ईमान का नक्श पैदा होता है या ईमान टूटता है, वो क्या है? मुसलमानों की तकफीर या कुफार की अदम तकफीर। तकफीर क्या? काफिर कहना। आइए इसको पढ़ते हैं। जो शख्स मुशरिकीन को काफिर ना करार दे या इनके कुफर में शक करे या इनके मजहब को सही करार दे और इसके बरक्स अहले ईमान को काफिर ठहराए اور ان کے ساتھ جنگ کو جائز قرار دے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ کفر کو کفر نہ قرار دینا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے برابر ہے، ایسی ہے نا۔ اسی طرح سے ایک مومن صادق کو کافر قرار دے دینا بھی کفر ہے، اس لیے کہ اس میں نفس ایمان پر تانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرمی رجلا بالفسق او بالکفر الا ارتدت علیہ الم یکن صاحبہ کذالک۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق یا کفر کا الزام نہ لگائے، اگر یہ الزام غلط ہوا تو خود الزام لگانے والے پر ہی لوٹ آئے گا۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو کیا سمجھ آئی اس آخری بات کو سمجھنے سے کہ کسی کے ایمان کے باوجود، کسی کے خود کو مسلمان کہنے کے باوجود آپ اس کو کافر کہہ دیں؟ آج کتنا آرام سے لوگ ایک دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں، جہنمی کہہ دیتے ہیں، لانتی کہہ دیتے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ میرے آپ کے پاس تو ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو جا کر تو اس کی بنیاد پہ کفر پہ اور شرک پہ اور نفاق پہ ڈال دیں، لیکن اپنے عمل سے اگر کوئی دکھا رہا ہے تو وہ فسق ہے۔ مجھے آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا، دیکھیے کمنٹیٹر نہ بنیں، خبریں نہ سنائیں لوگوں کو۔ اگر آپ کو مسلمان میں کوئی کمی دکھتی ہے نا، دعا کریں، اس کی اصلاح کریں، اس کو جا کے بتا دیں۔ ہم بعد میں دوسروں کو بتائیں اور اس کو نہ بتائیں، یہ ہمارا جرم ہے۔ اس کا جرم ہو سکتا ہے چھوٹا ہو جائے، ہمارا اس سے بڑا ہوگا۔ اور دوسری طرف رہ گئی کسی کو غلط کام کرتے دیکھ، بس آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں اس نے گلے میں سلیپ ڈالی ہوئی ہے، ایک مورتی کے سامنے کھڑا ہو کے وہ اپنے کلام کے مطابق اس سے مدد مانگ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں نو وی آر سو لیبرل، کوئی کہتا ہے یہ کیسا عمل ہے، تو آپ کہتے ہیں اٹس اوکے، نو پرابلم، شاید وہ اندر سے بہت نیک ہو۔ یہ جو ہم نے ہینکی پینکی رکھی ہوئی ہے نا، اور آج ڈپلومیٹک ریلیجن ہے ہم مسلمانوں کا، بعض اوقات کہتے ہیں سب کو آنے دو۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے، بعض دفعہ مسلمان غلط کام کرتے ہیں، خلاف سنت کام ہے، بدعت ہے، لوگ کیوں نہیں روکتے ان کو کرنے سے؟ کہتے ہیں نہیں پھر لوگ ہماری ممبر شپ سے نکل جائیں گے، لوگ چندہ دینا چھوڑ دیں گے۔ تو بھئی آپ تو خود کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب کوئی کر رہا ہے تو پھر ہم اس کی اجازت تو دے دیتے ہیں۔ دو ٹوک، آپ دیکھیے، قول قولا سدیدا، یہ 13 باتیں تھیں جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ان میں کوئی ایک یا سب باتیں ہوں تو ایک بندہ عند اللہ یعنی اللہ کی نظر میں دین سے نکل جاتا ہے۔ یہاں یہ آپ کو بتا دوں کہ مجھے آپ کو پھر بھی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کفر پہ ہیں۔ مثلا آپ کسی کو دیکھیں وہ نماز نہیں پڑھا تو آپ کہہ دیں جی میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ دین پر عمل کرنا جب چھوڑ دو تو اسلام چلا جاتا ہے، تو میری نظر میں آپ تو آج سے کافر ہیں، مجھے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہی چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ جو ہیں ایسے کاموں میں ان کو ہم کیوں کس طرح سے بدلیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کتاب کے اعتبار سے ہم نے ایک بڑا ٹاپک پڑھ لیا، اور میری نظر میں اس کی حیثیت بیج کی ہے۔ یہ جو عقیدے کی بنیادیں پختہ ہوتی ہیں نا، ایمان باللہ، اسی سے پھر آگے توکل، شکر، اطاعت، محبت اللہ کی پیدا ہوتی ہے۔ آپ میں سے بہت ساروں نے اکثر دیکھا ہے، جو ہمارے آپ ویب سائٹ سے جا کے دیکھ بھی لیں، اسلام اے ٹو زی پریزنٹیشن، درخت کی پہلے جڑیں ہوتی ہیں نا، تو جڑیں پھر کیا ہیں؟ اگر ایمان پکا ہے نا تو لکھ لیں، پھر آپ کے دل میں اللہ پر توکل لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔